नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। 2008 का मुंबई अटैक भला किसे नहीं याद होगा। 3 दिनों तक पूरा देश शॉक में था। अजमल कसाब इकलौता ऐसा आतंकी था जिसे जिंदा पकड़ा गया और दुनिया के सामने पाकिस्तान की हरकत बेनकाब हुई। मगर कसाब की गिरफ्तारी के बाद उसे जिंदा अदालत में पेश करना कुछ कम चुनौती भरा काम नहीं था। हमले के वक्त मुंबई पुलिस के JCP राकेश मारिया अपनी किताब लेट मी से इट नाउ में लिखते हैं, क्राइम ब्रांच के जॉइंट कमिश्नर के तौर पर कसाब को जिंदा रखना मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। लोगों और अफसरों का उसके प्रति बर्ताव देखते हुए मैंने उसके गार्ड्स खुद चुने थे। ISI और लश्कर उसे किसी भी तरह खत्म करना चाहते थे ताकि हमले के इकलौते जिंदा सबूत को मिटाया जा सके। हमें भारत सरकार से खत मिला कि कसाब की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच पर है। केंद्रीय जांच एजेंसियों से मिली जानकारी से पता चला कि पाकिस्तान ने कसाब को मारने का काम दाऊद इब्राहिम गैंग को दिया था। उसे कुछ हो जाता तो सिर्फ मेरी नौकरी ही नहीं बल्कि मुंबई पुलिस की प्रतिष्ठा दांव पर थी, वरना कसाब होता हिंदू आतंकी। कसाब और उसके साथी फर्जी आइडेंटिटी कार्ड के साथ आए थे, ऐसे में उनके झूठ को उजागर करने के लिए कसाब का जिंदा रहना जरूरी था। राजेश ने अपनी किताब में लिखा है, अगर कसाब उस फर्जी ID के साथ मर जाता तो अखबारों की हेडलाइंस चीख रही होती कि कैसे एक हिंदू आतंकवादी ने मुंबई पर हमला किया। TV पत्रकार बेंगलुरु में इकट्ठे होकर उसके परिवार और पड़ोसियों का इंटरव्यू ले रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान के फरीदकोट का अजमल कसाब मेरे सामने बैठा था और मैं उससे पूछ रहा था कि क्या करण आया है। धीरे धीरे कसाब ने सारी परतें खोली, हमले के लिए भर्ती किए जाने से लेकर मुंबई में घुसने तक। क्या था अल हुसैनी? यूं तो 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट और 2008 के मुंबई टेरर अटैक के बीच 17 साल का अंतर था, मगर एक नाम ऐसा भी था जो इन दोनों आतंकी घटनाओं में सामने आया। वो नाम था अल हुसैनी। राकेश मारिया अपनी किताब में लिखते हैं, कसाब और उसके साथ ही अल हुसैनी नाम की नाव से मुंबई में दाखिल हुए थे। ये नाम 1993 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस में भी सुनने को मिला था। उस हमले के मुख्य आरोपी टाइगर मेमन के अपार्टमेंट ब्लॉक का नाम भी अल हुसैनी था। पुलिस के मुताबिक इसी इमारत में साजिश रची गई थी। पुलिस में गद्दार की तलाश। मुंबई हमले के बाद कसाब की 2 तस्वीरें इंटरनेट पर खूब इस्तेमाल होती हैं। हाथ में AK-47 लिए कसाब की एक तस्वीर जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की है और दूसरी फोटो मुंबई के एक पुलिस थाने की है। उस दूसरी तस्वीर के बारे में मारिया लिखते हैं, हमने बहुत सावधानी बरती कि उसकी फ़ोटो ना खींची जाए और कोई फ़ोटो मीडिया के पास ना जाए। जब कुर्सी पर बैठे कसाब की फ़ोटो मीडिया में चलने लगी तो हमें झटका लगा। मैंने सभी अफसरों को किनारे बुलाकर पूछा, गद्दार कौन है? सब ने इनकार किया। उनके चेहरे से पता चल रहा था कि वो सच बोल रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि केंद्रीय एजेंसियों ने कसाब से पूछताछ के लिए अपना एक अफसर मुंबई भेजा था। दरअसल कसाब की फ़ोटो जारी करके भारतीय एजेंसियां पाकिस्तान को ये संदेश दे रही थीं कि हमले में पाकिस्तानी हाथ होने का जिंदा सबूत कसाब भारत के पास है। यूपी की योगी सरकार सत्ता में आने के बाद से ही बाहुबली नेताओं पर लगाम लगाने में लगी हुई है। कथित रूप से बाहुबली नेताओं द्वारा अपनी धौंस के दम पर अर्जित की गई संपत्ति पर कार्रवाई कर रही है। इन नेताओं में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे बड़े नाम हैं, लेकिन अब इसमें रिजवान जहीर का नाम भी जुड़ गया है। पिछले दिनों योगी सरकार ने रिजवान जहीर पर भी कार्रवाई की है, तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कौन है जहीर रिजवान और कैसा रहा है उनका राजनीतिक सफ़र। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद रिजवान जहीर के खिलाफ 12 मई को बड़ी कार्रवाई हुई। बलरामपुर में तुलसी नगर से सटे शीतलापुर गांव में पूर्व सांसद की कोठी और बगल में खाली पड़ी जमीन को प्रशासन ने मुनादी के बाद सीज कर दिया। सीज संपत्ति की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सिर्फ कोठी ही 2 करोड़ रुपए की है। रिजवान जहीर का नाम इतना बड़ा है कि विरोध के डर से सरकार को वहां पर पुलिस और PAC को तैनात करना पड़ा। हालांकि इस समय जहीर अपनी बेटी और दामाद के साथ एक मर्डर केस में जेल में बंद हैं। रिजवान जहीर की राजनीतिक सफ़र की बात करें तो वो साल 1989 में निर्दल, 1993 में SPA और 1996 में BSPA से तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। साल 1998 और 1999 में स्पा से वो श्रावस्ती लोकसभा से सांसद रहे। रिजवान जहीर के राजनीति के सितारे गर्दिश में उस वक्त आ गए जब उन्होंने साल 1999 के बाद मुलायम सिंह यादव को ही सीधा चैलेंज करते हुए कहा कि रिजवान जहीर को किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो खुद मुलायम सिंह यादव आकर मेरे खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं, वो भी चुनाव हार जाएंगे। जिसके बाद से ही रिजवान जहीर के सितारे गर्दिश में चले गए और तब से उन्होंने एक भी चुनाव नहीं जीता। हालांकि 2021 में अखिलेश यादव उन्हें फिर से स्पा में ले आए। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।